नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 90.4 FM। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपका अपना चैता कार्यक्रम आपका स्वस्थ आपके हाथ में। आज के शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन, जो खास ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काफी समय से अपनी सेवाएं देते हैं। तो आइए डॉक्टर सचिन जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के शो में।
जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। और मैं चाहूंगा कि जैसे कि अभी 31 मई को विशेष एंटी टोबैको डे के रूप में पूरे विश्व में ये दिन मनाया गया है, तो इससे होने वाले बहुत सारे जो नुकसान है उसके बारे में काफी जानकारी बहुत सारे लोगों को अलग अलग मीडिया के माध्यम से मिला है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से भी कुछ विशेष बातें इस विषय पर बताएं।
हाँ जी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये एक ऐसा दिन है कि लगभग 1987 से यह चालू हुआ है, जिसमें कि 170 कंट्रीज एकत्र आए और तब से फिर उन्होंने एक संधि बनाई और जो विश्व में तंबाकू के वजह से जो होने वाला नुकसान है, जो बढ़ रहा है और जिसके वजह से कई बीमारियां हो रही है, उसके बारे में एक विशेष एक साल भर के लिए थीम रखने के लिए एक दिन को फिक्स किया गया है और उस दिन का नाम रखा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे, और ये हर साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल भी 31 मई को ये सेलिब्रेट किया गया और इस साल का जो थीम था वो था बैन टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप, माना कि विज्ञापन संवर्धन और प्रयोजन ये उसका रोकना है। आज आप देखेंगे कि तंबाकू की वजह से जो आंकड़े अभी जो सामने आए हैं फिलहाल वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं, जिसमें ऐसा पता चलता है कि 60 लाख जो मृत्यु हो रही है विश्व भर में वो केवल तंबाकू की वजह से हो रही है। और उसमें भी और एक विशेष गौर करने की बात है कि जो 6 लाख मृत्यु हो रही है विश्व भर में वो हो रही है सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से, जिसको पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है या निष्क्रिय धूम्रपान। उसमें मतलब व्यक्ति तो नहीं ले रहा है पर उसके धुआं जो है उसके फेफड़ों में जा रहा है किसी और के वजह से, कोई दूसरा और स्मोकिंग कर रहा है और हम उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो इस वजह से होने वाली जो मृत्यु है वो है 6 लाख और स्मोकिंग डायरेक्ट एज अ कॉज की वजह से होने वाली जो मृत्यु है वो है 60 लाख। तो ये सही में चौंका देने वाले आंकड़े है। अभी आप तो जानते होंगे कि स्मोकिंग से वजह से तो कई नुकसान तो होते ही है, जैसे कि कैंसर तो सबको पता हुआ है, पता ही है, परंतु केवल कैंसर ही एक रोग नहीं है जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है। उसका जो धुआं होता है उसमें लगभग 3000 से 4000 ऐसे रसायन होते हैं, केमिकल्स, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। तो कैंसर तो है ही है पर साथ साथ रक्त की जो धमनियां होती है वो और कम हो जाती है, उनका साइज कम हो जाता है जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और उसके वजह से फिर हमको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, हृदयघात हो सकता है, उसके वजह से पैर में पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज हो सकते हैं, कई प्रकार के कैंसर, केवल फेफड़ों का ही कैंसर नहीं परंतु तंबाकू जो अलग अलग रूप से सेवन किया जाता है जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तो उसके वजह से मुंह के कैंसर, गाल के कैंसर, फिर पेट में पेट के कैंसर, ये अनेक प्रकार के कैंसर इसके वजह से हो सकते हैं। तो केवल कैंसर ही ऐसा नहीं है पर बाकी भी जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी इसी के वजह से हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप प्रैक्टिस तो करते ही हैं, तो ऐसा कोई पेशेंट के बारे में एक्सपीरियंस सुनाइए जिसके मना तंबाकू के वजह से उसको कैंसर हुआ हो। हाँ, या जो आपके निरीक्षण में हुआ और आपने उनको ट्रीट किया हो।
जी एक पेशेंट है, अभी भी हॉस्पिटल में आया करता है वो, उसने लगभग 30 साल तक बीड़ी पी है। वो लगभग 1 या 2 बंडल बीड़ी के लेता था रोज, जैसे आप जानते होंगे एक बंडल में 20 से 30 होती है बीड़िया। तो ये जो व्यक्ति है इसने लंबे समय तक बीड़ी पिया और उसके बाद में उसके गले में दर्द चालू हुआ। तो वो मेरे पास आया था लगभग 1 साल पहले, फिर हमने उसकी काफी जांच वगैरह सब कुछ कराई और हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट है डॉक्टर शरद मेहता जी, उनको भी हमने कंसल्ट किया, फिर बाद में पता चला कि वो जो कैंसर, उसको जो गले में जो तकलीफ होती थी वो कैंसर की वजह से होती थी। तो उसको गले का कैंसर हो गया था, फिर इसी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन भी कराया गया। वो बड़ा ऑपरेशन होता है, लंबा समय तक चलता है और आज भी वो मरीज तो जिंदा है परंतु उसके गले में जैसे कि एक छेद किया गया है जिसको हम ट्रकियोस्टोमी कहते हैं और उसको वहां से सांस लेनी पड़ती है।
अच्छा।
हाँ जी, बोल वो थोड़ा थोड़ा बोल सकता है परंतु सांस जो लेने का काम है वो गले से करना पड़ता है और उसको हर 15-15, 20-20 दिनों में आता पड़ता है और वो जो यहाँ पे कभी ब्लॉक हो जाता है तो उसको वो क्लीन करना पड़ता है, ट्रकियोस्टोमी ट्यूब जिसको कहते हैं।
तो खाना वगैरह, उनका
खाना वगैरह तो वो खा सकता है थोड़ा थोड़ा, परंतु वो नली है उसको जिसमें वजह से उसको सांस लेना पड़ता है। मे बी नियर फ्यूचर देखेंगे उसका क्या किया जा सकता है, पर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति पहले सब कुछ काम करता था, अभी वो कोई काम नहीं कर पाता, उसमें कमजोरी है, परंतु जिंदा तो है क्योंकि उसका टाइम पर इलाज हो गया है और उसका जो कैंसर है और दूसरे ऑर्गन से बॉडी में वहां पे नहीं फैला था। तो
ये
मेरे
एक अच्छी
सामने एक
बात।
सामने उदाहरण है जो अभी भी हर 15 दिन में आते ही रहता है।
बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर की हमारे साथ। मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीजों से, हमारा जो तंबाकू सेवन करते हैं उनको किसी भी तरह से इसको बंद करना चाहिए, यही डॉक्टर साहब का कहना है। आगे और भी बातें सुनेंगे कि किस तरह से, जैसे इस साल जो थीम लिया है उसके ऊपर फिर कैसे आगे ये लोग वर्क करेंगे।
जी, जैसे मैंने कहा इस बार का जो थीम है वो है टोबैको एडवर्टाइजिंग को रोकना। आप देखेंगे एक 2004 और 2005 में एक स्टडी हुई थी, जो भी हिंदी सिनेमा है आज उसके ऊपर ये स्टडी हुई थी। तो इसमें ऐसा देखा गया ये स्टडी में कि 89% जो मूवीज है उसमें तंबाकू किसी ना किसी रूप से सेवन करते हुए दिखाया गया। उसमें से 67% जो मूवीज है उसमें जो मेन एक्टर है हीरो उसको तंबाकू या सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, और 41% फिल्म ऐसी थी जिसमें ब्रांड दिखाया गया, और 27% ऐसी हिंदी मूवीज थी कि जिसमें तंबाकू के नीचे जो वार्निंग लिखी रहती है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसकी जैसे कि निंदा की गई या ग्लानी कर दी गई है। ये तो हो गई 2004 और 2005 की एक स्टडी। अभी हाल ही में एक स्टडी, एक एनजीओ है हृदय जिसका नाम है हृदय दिल्ली में, उसने एक स्टडी की कि ये जो मूवीज जो फिल्में जो देखते हैं बच्चों पर इसका क्या असर होता है। तो इसमें दिखाया गया है कि क्योंकि बच्चे आज जो है वो फिल्म एक्टर्स को अपना जैसे देवता मानते हैं, उनके नाम पर जैसे मंदिर बनते हैं, तो वो जैसे करते हैं वो वैसा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि ये कर रहे तो हम क्यों ना करें। तो एक इसके लिए बहुत सारे एंटी टोबैको लॉज भी बने हैं, जैसे 2008 में गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन एक लॉ बना है जिसमें कई प्रतिबंधात्मक चीजें हैं कि मूवीज में ये सब नहीं होनी चाहिए, पर इतने लॉज होते हुए भी पूरी तरह से उसको फॉलो अभी तक नहीं किया जा रहा है, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे लॉज तो बना के रखे हुए हैं। तो ये है एडवर्टाइजमेंट। दूसरी एक बात है स्पॉन्सरशिप। आपने सुना होगा कई कंपनियां ऐसी है जैसे कि टोबैको जो है उसका एडवर्टाइजमेंट करना बैन है टीवी पर, तो ये कंपनियां क्या करती है पूरी की पूरी, जैसे क्रिकेट की सीरीज स्पॉन्सर कर दिया, जैसे विल्स पूरी की पूरी क्रिकेट स्पॉन्सर कर दिया। अब जब भी आप कोई क्रिकेट मैच देखेंगे तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है विल्स, बीच में आता है विल्स विल्स विल्स। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो युवा है जो इसको देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई हमको ऐसा अगर प्ले करना है तो शायद हमको भी ये विल्स लेना पड़ेगा। तो ये एक जैसे कि ये कंपनी जो है ITC कंपनी, जब ये चालू हुई थी तो इसका केवल 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, आज वो कंपनी हर साल 3,120 करोड़ जैसे कि मुनाफा कमा रही है, और दूसरा इसकी ये जो कंपनी है 25 अरब सिगरेट हर साल ये बनाती है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ये जो सिनेमा है, इस तरह से जो भी इसको स्पॉन्सरशिप कर रहे, जैसे आपने सुना होगा मानिकचंद फिल्म फेयर अवार्ड, अब ये क्या कर दिया इसने, मानिकचंद जो कंपनी है ये पूरा के पूरा फिल्म फेयर अवार्ड्स को स्पॉन्सर कर रही है, तो जहां तहां उसके पोस्टर्स लगेंगे ये लगेंगे। तो इस तरह से इस बार का जो थीम है वो है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है, ये प्रमोशन जो है, ये स्पॉन्सरशिप है, इसको रोकना, किसी भी तरह से इसको रोकना है।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये थीम बहुत ही अहम है क्योंकि ज्यादातर लोगों को प्रभावित करने वाली यही चीज होती है। अगर इसके ऊपर बैन लगाया जाए, इसके ऊपर रोक लगाया जाए, तो आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे जो तंबाकू सेवन में जो है कमी आ जाएगी, और आशा करते हैं कि इसी तरह हो और सभी लोग इस जो दर्दनाक हादसे से मुक्त रहे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो आपके हिसाब से मैं चाहूंगा कि किस तरह से काम होना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए आम आदमी को भी?
देखिए, आम आदमी को तो सबसे पहले ये जानना होगा कि तंबाकू जो है उसके वजह से, उसका सेवन जो करते हैं उसके वजह से क्या क्या हानियां होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग कर रहा है, जब मेरे ओपीडी में कोई आता है मैं उसको कहता हूं कि इसको छोड़ दो, तो वो इतना लाइटली लेता है, परंतु जब उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जैसे हाल ही में एक मरीज था जो लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था, पर जब उसको हार्ट अटैक आया और फिर हमने उसको बताया कि भाई तुमको ये सब कुछ जो हुआ उसके वजह से हुआ, फिर उसका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी 1-2-3 लाख का खर्चा आया, तो तभी अभी 6 मास हो गया उसने पूरा छोड़ दिया है। तो एक तो ये तो खुद का अनुभव हो गया, परंतु आम आदमी जो है पहले उसको ये समझना चाहिए कि ये नुकसान होते हैं, और जो नुकसान दूसरों को हो रहे हैं वो हमको भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई दूसरों को ही होगा, उसका अपना एक शरीर है, उसके अपने अंग है, तो ये जो उसके शरीर के ऑर्गन्स है ये सारे भी उससे डैमेज हो सकते हैं। और दूसरी एक बात है, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसमें सबसे पहले तो यह हमको इच्छा उत्पन्न करनी पड़ेगी कि भाई ये तुमको छोड़ना है। विदाउट एक स्ट्रांग विल पावर जिसको कहते हैं, कोई भी व्यसन को छोड़ा नहीं जा सकता। थोड़ी सी भी उसमें इच्छा हो तो हम उसको हर तरह से उसकी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल हॉस्पिटल में ही हमारा साइकेट्रिक विभाग है, वहां पर डी एडिक्शन प्रोग्राम चलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक दूसरा विभाग है, होम्योपैथी डिपार्टमेंट, वहां पर भी नशा मुक्ति के लिए उनको कई प्रकार की दवाइयां दी जाती है। तो इस तरह से हमको हर प्रकार से, ना केवल मरीज पर उसके जो घर वाले हैं उनको भी हमको कॉन्फिडेंस में लेकर, उनके साथ में भी हमको थोड़ा काउंसिलिंग सेशन रखकर हर तरह से मरीज को मदद करनी है कि ताकि वो अपनी इस जानलेवा जो आदत है या जो लत है इससे वो मुक्त हो सके।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब। चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपका स्वस्थ आपके हाथ में, और हमारे साथ है डॉक्टर सचिन जी, और खास तंबाकू निषेध इस विषय पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। आगे इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत। मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, आपका स्वस्थ आपके हाथ में। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सचिन जी से। काफी अच्छा उन्होंने विचार मंथन किया है किस तरह से हम इस तंबाकू से मुक्त हो सकते हैं, या तंबाकू से होने वाले बीमारियों से कैसे बचा जाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, वही मैं पूछ लेता हूं। क्या तंबाकू का सेवन करने से बच्चे और गर्भवती महिला पर भी इसका असर होता है?
हाँ जी बिल्कुल। गर्भवती महिला जो है, आप देखेंगे उनके पेट में बच्चा होता है, और अगर गर्भवती महिला स्मोकिंग करती है, किसी भी तरह से तंबाकू का यदि सेवन करती है, जो गर्भस्थ शिशु है इस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आपने देखे होंगे कई बच्चे फटे होठ वाले, फटे तालू वाले जो जन्म लेते हैं, वो किस वजह से? या आपने अभी ऐसे देखा होगा कि बच्चे जो है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है जिसका वजन बहुत कम होता है, जिसको लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। ये सारी जो होती है, जिनको जन्म तो होता है पर जन्मते ही मतलब एक दो महीने में बार बार बीमारियां आनी चालू हो जाती, किसी को निमोनिया होता है, किसी को और कुछ होता है। तो ये जो कारण है लो बर्थ वेट बेबी होना, कम वजन, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, या उनको कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होना, अलग अलग प्रकार की, जैसे मैंने एक दो आपको गिनाई, तो ये सारे जो कारण है बच्चों को हो सकते हैं। और यदि माँ अगर पीती है और छोटा बच्चा पास में है उसके, तो वो जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग जिसको बोलते हैं निष्क्रिय धूम्रपान, क्योंकि वो धुआं तो उसके अंदर जा ही रहा है, उसके फेफड़ों के अंदर, तो वो सारी बीमारियां, जैसे मैंने पहले गिना ही कैंसर की बीमारियां है, अलग अलग प्रकार के कैंसर जो बॉडी में होते हैं, वो सारे सब बीमारियां बच्चों को होने में संभावना होती है। और दूसरी आपने पूछा बच्चे, अगर यही बच्चे मतलब बड़े होते हैं तो जब ये देखते हैं कि उनकी माँ उनके पिताजी पी रहे हैं, तो उनको जैसे कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी इसके आदि हो जाए, क्योंकि उनके सामने वही प्रेरणा होते हैं, तो वो भी बचपन से ही पीना चालू करते हैं। तो दोनों तरफ से ये काम करता है। और बच्चों को भी हर प्रकार की बीमारियां होती है, कैंसर की बीमारी उसमें अहम है, परंतु बाकी बीमारियां तो है ही है। जी,
तो मुझे लगता है कि हमारे जभी सभी सुनने वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर घर में कोई अगर पीता है, पिताजी हो या बड़ा बुजुर्ग कोई पीता है, तो उनसे दूर रहना चाहिए, ताकि हम उस जो धुएं से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम बच सके, और खास गर्भवती जो महिला है उनको इनसे दूर रखना चाहिए या दूर रहना चाहिए, ताकि आप अपने होने वाले बच्चे को किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, ये ध्यान रखें। तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि चलो इतनी सारी जो तकलीफें हैं इससे हो रही हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय आपके हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं?
जी, जैसे मैंने पहले बताया कि हर व्यक्ति को पहले तो एजुकेट करना है, उसमें एक अवेयरनेस, एक जागरूकता निर्माण करना है कि ये तंबाकू क्या है और उससे होने वाली बीमारियां क्या क्या है। अब दूसरा एक वर्ग है कि जो इसके आदि हो चुका है, इसकी जैसे तीन स्टेजेस होती है। पहले व्यक्ति जो सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू चालू करता है वो तो शौकियाना तौर पे चालू करता है, मजे के लिए चालू करता है या स्टाइल के लिए चालू करता है, अलग अलग, या फिर कोई शारीरिक मानसिक परेशानियां हो घर पर उसके वजह से चालू करता है, पर धीरे धीरे फिर उसका आदि बनते जाता है। और एक लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें, जिसको कहा जाता है टोटल डिपेंडेंस, कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकता है, और यदि वो छोड़ने की कोशिश भी करे, वो 10 दिन छोड़ भी देता है, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो तंबाकू होता है उसमें एक रासायनिक चीज होती है निकोटीन। ये निकोटीन जैसे ही ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन में जाने के बाद कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जिसके वजह से व्यक्ति को बहुत अच्छा लगने लगता है, प्लेजेंट सेंसेशन आते हैं। तो ये जो सेंसेशन है, एडिक्शन है ये, जैसे कि इसकी उसको तलब लग जाती है, तो ये वही वही बार बार चाहता है। और जब वो छोड़ने के बाद 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसको वो नहीं मिलती है, तो वो परेशान सा हो जाता है, कंपन आने लगते हैं हाथ में, या और दूसरी शारीरिक परेशानी हो जाती है। इसके लिए उस व्यक्ति को इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हमको उसको, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा, एक विल पावर जागृत करनी पड़ेगी, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। और फिर हमारे पास मेडिकल के तौर पे कुछ मेडिसिन्स है, जैसे आपने देखा मैंने बताया कि तंबाकू का जो धुआं है उसमें 3000 से 4000 केमिकल्स है, उसमें से एक केमिकल है निकोटीन। तो हम उसको एक थेरेपी जिसको कहा जाता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो एक ऐसी कुछ उसको दवाइयां दे जिसमें खाली निकोटीन हो, क्योंकि एडिक्शन करने वाला तो खाली निकोटीन है, बाकी तो फिर कैंसर और बाकी बीमारियां करता है। तो ये जो निकोटीन है, ये निकोटीन गम, निकोटीन पैचेस, निकोटीन टैबलेट्स, अलग अलग रूप में ये अवेलेबल है। तो इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको कहे कि एकदम आप रोक दो, बंद कर दो, तो वो तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स सब चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम उसको डी एडिक्शन, ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। उसके गम्स अवेलेबल होते हैं, पैच अवेलेबल होता है, पैच आप शरीर में कहीं लगा दो, उसका असर 24 घंटे चलेगा। दूसरी जो थेरेपी है वो है कुछ मेडिसिंस, जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, या और इस तरह के हमारे पास मेडिकल में, साइकेट्रिक मेडिसिन में कुछ दवाइयां है, जो हम उसको उनको देंगे तो उनका मूड उससे अच्छा रहेगा, जो उदास भावना होती है, गिल्ट की फीलिंग होती है, उससे वो ऊपर रहेंगे। तो ये दो ऐसी चीजें हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये मेडिकल के तौर पर हम उनको ऑफर करते हैं। और कहीं आप देखेंगे, आपने सुना होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, पुनर्वसन सेंटर्स, तो ये ऐसे सेंटर्स होते हैं कि वहां उन्हें रखा जाता है 6 मास 3 मास, जैसे जैसे उनको हर तरह की वहां टीचिंग्स दी जाती है। आप अगर जानते होंगे कि 2009 में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक प्रोजेक्ट चला था माय इंडिया हेल्दी इंडिया, तो उसमें एक डी एडिक्शन प्रोग्राम्स भी था। तो ये जो डी एडिक्शन प्रोग्राम्स के तहत जो लोग इन व्यसनों के आदि है, उसमें तो सब कुछ था, शराब, दारू, सब कुछ, तो उन लोगों को मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सिखाया गया, और उसका रिजल्ट काफी अच्छा था। तो इस तरह से उनको काउंसिलिंग दी जाती है। हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उनको मेडिकल काउंसिलिंग, इस तरह से स्पिरिचुअल काउंसिलिंग भी देती है और साथ साथ उनको मेडिटेशन भी सिखाती है, उनमें जैसे कि एक स्ट्रांग विल पावर डेवलप करने के लिए। तो इट इज अ मल्टी टास्क वर्क, कोई एक चीज करने से नहीं होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसमें, हर तरह से उसको मदद हम करना है। जैसे मैंने एक बात और भी बताई कि उसकी जो परिवार है उसको भी हमको काउंसिलिंग करना है, ऐसे नहीं कि परिवार उसको एक घृणा की दृष्टि से देखता है, तो उनमें उनको भी हमको विश्वास में लेकर उस मरीज को, वो जो आदि व्यक्ति है उसको उसको छुड़ाने में मदद करने में हमको उनको काउंसिल करना है।
मतलब पूरा ही परिवार का भी,
पूरा परिवार का भी सहयोग
चाहिए, का भी चाहिए और फिर ये मेडिसिन वगैरह का
जी,
अच्छी
जी,
तरह
जी।
तो अगर समझो कोई चैन स्मोकर है और उनको अगर अपन ने पुनर्वासन सेंटर में रख दिया और उसमें कितना टाइम लगता है कि वो रिकवरी करे, कैसा?
इसमें देखो, आपने जैसे क्वेश्चन तो आपने पूछा है चेन स्मोकर के बारे में, तो 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है।
अच्छा, अच्छा,
वो डिपेंड करता है उसकी अपनी कितनी विल पावर है, उसको हम कितना मोटिवेट कर रहे हैं उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति है उसके अगर उसने अगर ठान लिया कि जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि जैसे एक व्यक्ति था वो सिगरेट पीता था, तो उसका एक छोटा बच्चा था और एक पत्नी थी जैसे, तो उस पत्नी ने उसे छोड़ दिया,
अच्छा,
डाइवोर्स दे दिया क्योंकि ये सिगरेट नहीं पीता था। तो ये जब भी ये जो व्यक्ति था, फिर ये पुनर्वसन केंद्र में आया, फिर इस पे सारी ट्रीटमेंट चालू हुई, तो उसको एक अलग प्रकार की जैसे ट्रीटमेंट दी गई जिसको हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसको यूज करते हैं, वहां पर उसको जैसे कि हमारा अवचेतन मन है, तो उसको ऐसा एक चित्र बनाने के लिए दिया कि इमेजिन करो कि तुम्हारी छोटी जो बच्ची है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, पर क्योंकि डाइवोर्स के बाद में पत्नी उसको बच्ची से मिलने नहीं देती थी, तो उसे ऐसा एक चित्र बनाने को कहा मन में, मेंटल पिक्चर, कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ खेल रही है और उसी के ऊपर वो चित्र देखो मन की आंख से, रोज रोज उसको देखो। तो वो जैसे देखता था तो फिर उसको याद आता था कि अरे ये बच्ची तो मेरे पास आएगी नहीं क्योंकि मैं पीता हूं। तो फिर उसने धीरे धीरे अपने आप को कंडीशनिंग करना चालू कर दिया अपनी अवचेतन मन की शक्ति से, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से, और ये एक मेंटल इमेजनरी इमेजिनेशन करके धीरे 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 वो इससे मुक्त हो गया। और साथ साथ दवाइयां तो चलती है, डॉक्टर्स के अलग अलग गाइडेंस जो है वो चलता है, उसको मेडिटेशन भी सिखाया गया, तो इस प्रकार से फिर बाद में वो परिवार एक हो गया।
अच्छा
जी,
ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि किस तरह से आपने ट्रीट किया, और कैसे, और एक हद दो एग्जांपल हमारे सामने रखिए जिससे हमको पता चले
जी।
कि
एक बात मैं कहना भूल गया कि मैंने जो कहा कि तंबाकू के वजह से होने वाले नुकसान तो आपको गिना है, पर और एक भी नुकसान है, जैसे बीड़ी का जो टुकड़ा होता है छोटा सा, आपने देखा होगा लोग पीते हैं और जो टुकड़ा है वो फेंक देते हैं। तो ट्रेनों में जो आग लगी है, खेतों में जो आग लगी है, घर में जो आग लगी है, जैसे कोई बिस्तर पर लेटे लेटे तंबाकू बीड़ी पी रहा है और वो टुकड़ा फेंक दिया, घरों में जो आग लगी है उसका एक कारण ये टुकड़ा है जिसको सिगरेट बट कहा जाता है, BUTT। तो ये जो टुकड़ा है इसके वजह से भी इस तरह की हानि होती है। दूसरी और एक बात, ये मतलब अलग प्रकार का नुकसान है एक तंबाकू की वजह से, और दूसरा एक नुकसान और एक है वो है कि आपने देखा होगा कि बीड़ी सिगरेट जो होती है उसमें कागज होता है, अभी वो कागज, फिर उसके बाद में उसका जो विज्ञापन होता है तंबाकू का, उसमें लगने वाला पेपर, तो वैज्ञानिकों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि 500 सिगरेट बनाने के पीछे एक झाड़ कटता है।
ओह, अच्छा डॉक्टर साहब,
ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है, मतलब ये अलग प्रकार के नुकसान है उसके,
नुकसान तंबाकू से जो है उसके एक्स्ट्रा जो
नुकसान जिसको
वो
हम कह सकते हैं, राइट।
और मैं चाहता हूं कि यहाँ इस एरिया में किस तरह के ज्यादातर लोग सेवन करते हैं और उसमें आपने आपका अनुभव हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है।
जी, यहाँ पे ही क्या, अगर भारत में आप पूछे तो भारत में सबसे ज्यादा जिस प्रकार से तंबाकू का सेवन किया जाता है वो है बीड़ी, क्योंकि बीड़ी सबसे सस्ती होती है। दूसरा उसका एक रूप है वो है गुटखा, आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के हजारों गुटके, गुटके की कीमत लगभग 3 से 5 रुपए होती है, सस्ती होती है, बीड़ी भी सस्ती होती है, सिगरेट थोड़ी कॉस्टली होती है। इसके लिए ये जो हमारा जो बेल्ट है सिरोही, आपने देखे होंगे ग्रामीण बेल्ट है, यहाँ कई ग्रासिया रबारी इस तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ तो हमने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो भी गुटके के आदि होते हैं, बचपन से ही गुटखा पीना चालू कर खाना चालू कर देते हैं, और बड़े जो होते हैं वो गुटखा तो लेते ही है, साथ साथ बीड़ी भी लेते हैं। तो ये दो रूप है उसके, कि बीड़ी और गुटखा। तो यहाँ हमने देखा कि कई जो इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं जो बीड़ी और गुटखा का सेवन करते हैं, तो इन्हों को हमने जैसे मैंने अभी तक जो सारा कुछ बताया किस किस तरह से उनको काउंसिलिंग किया जाए किया गया, इस तरह से इनको काउंसिलिंग करके हमने कई लोग हैं कि जिनको हम इन व्यसन से छुड़ा पाए, पर इस बात में हम पूरा अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जैसे मैंने कहा उनको, क्योंकि ये जो लोग हैं गांव में रहते हैं देहात में रहते हैं तो ये महीने में एक बार आते हैं दो बार आते हैं, पूरा इनके साथ में फॉलोअप इतना हो नहीं पाता है हमारा, तो ये अभी भी हम प्रयास तो कर रहे हैं, जैसे हमारे दो विलेज प्रोजेक्ट है, इधर एक है वीओपी और दूसरा है कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, तो गाड़ियां हमारी हॉस्पिटल की तरफ से गांव में जाती है वहां पर उनको एजुकेट किया जाता है, पर कोशिश जारी है जी।
तो अंत में मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस शो में रहे और तंबाकू के बारे में इतनी सारी अच्छी जानकारी आपने दिया और उसका इलाज भी क्या है वो भी आपने बताया, और इलाज के लिए अपने यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में ही डीएड एक्सटेंशन सेंटर है जहाँ पर आप संपर्क करके अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं। जो भी सुनने वाले हैं या जिनके घर में इस तरह की तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाता है, मैं उन सभी से आह्वान यही करना चाहूंगा कि आप डी एडिक्शन सेंटर जो ग्लोबल हॉस्पिटल का है वहां संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर सचिन जी से भी मिल सकते हैं, उनसे भी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से क्या उपाय करना चाहिए। तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और एक छोटा सा संदेश मैं सुनना चाहूंगा सभी सुनने वालों के लिए आपकी तरफ से।
मैं सभी भाई बहनों को यही कहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि तंबाकू से कोई फायदा तो हमको होता नहीं है, फायदा जो हो रहा है वो कंपनियों को हो रहा है, फायदा जो हो रहा है वो उनको हो रहा है जो इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो आप जो भी टीवी पर या कहीं और मीडिया में देखते हैं कि जिस प्रकार से आप उनसे प्रभावित नहीं होना है आपको, तो आपको उसके जो नुकसान है उसके बारे में जानना है, उसके बारे में पढ़ना है, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो ये सब आप करेंगे तो आप इस जो ये जो व्यसन है इससे तो दूर ही रहेंगे, और यदि आप इसके आदि है तो आप ग्लोबल हॉस्पिटल में आकर या और भी कहीं पुनर्व्यसन केंद्र है वहां जाकर अपने आप को इस व्यसन से मुक्त कर सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का इस बार जो WHO ने राजस्थान जो स्टेट है भारत में उसको अवार्ड दिया है कि बहुत अच्छा कार्य करने के लिए इस विषय में पुनर्व्यसन डी एडिक्शन के विषय में। और एक जो चीज है जो मैं बताना भूल गया कि गवर्नमेंट ने जो एक कदम और उठाया है वो है टैक्सेस बढ़ा दी है तंबाकू पर। अच्छा, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ाया है वो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में से।
अच्छा,
हाँ, तो ये राजस्थान का जैसे इस बारे में राजस्थान सबसे आगे है, और WHO के तरफ से राजस्थान जयपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसको एक अवार्ड भी दिया गया है इस विषय में। तो ये तो हुई राजस्थान गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट अपना प्रयास करते रहे, परंतु हम स्वशासन से स्वनियंत्रण से या स्पिरिचुअल काउंसिलिंग से राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और सभी व्यसनों से रोगों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो यही मैं अपना संदेश कहना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें दी, और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी सुनने वालों को बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है और ये मैसेज वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए, और अपने परिवार में किसी भी तरह का नशा कोई करता हो तो उनको रोकने की कोशिश करें, उनको इस तरह से डॉक्टर सचिन या ग्लोबल हॉस्पिटल से संपर्क करके आप राय सलाह ले सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार को अपने आप को नशे से बचाए रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।